नमस्कार भारत, तारीख 7 मई, दिन शनिवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का भारत दौरा स्थगित। नेपाल सरकार ने भारत में अपने राजदूत को वापस बुलाया। राजदूत दीप उपाध्याय बोले,
देखिए अभी राजनीति में इससे होता है, अब थोड़ा सा सरकार को कोई भी किस्म का हमसे अगर कम्फर्ट नहीं हुआ होगा तो उनका अपना निर्णय सरकार कर ही सकता है, प्रेरोगेटिव है।
पाकिस्तानी मूल के सादिक खान ने रचा इतिहास, बने लंदन के पहले मुसलमान मेयर। आम आदमी पार्टी ने मोदी की डिग्री को लेकर फिर लगाया आरोप।
मोदी ने 1975 में एडमिशन लेकर 1978 में बीए करी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र महावीर प्रसाद मोदी है।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अपना भारत दौरा स्थगित कर दिया है। पद संभालने के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा होता। नेपाल सरकार ने शुक्रवार को भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को वापस बुलाने का फैसला भी किया है। ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी के नेता सादिक खान अपने करीबी प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को हराकर लंदन के मेयर चुने गए हैं। वे लंदन के मेयर बनने वाले पहले मुसलमान होंगे, साथ ही वे यूरोपियन यूनियन की किसी भी राजधानी के पहले मुसलमान मेयर होंगे। लंदन के मेयर पद के लिए चुनाव नतीजे लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोबेन के लिए भी उत्साहवर्धक रहे हैं। ब्रिटेन के अन्य हिस्सों में हुए चुनावों में लेबर पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लंदन का मेयर चुने जाने के बाद सादिक खान ने कहा,
I'm so proud that London has today chosen hope over fear and unity.
मुझे इस बात का गर्व है कि लंदन ने डर के ऊपर उम्मीद और विभाजन के ऊपर एकता को चुना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सामने फिर कभी ऐसे विकल्प पेश नहीं किए जाएंगे। डर हमें सुरक्षित नहीं बनाता है, बल्कि ये हमें कमज़ोर बनाता है, और हमारे शहर में डर की राजनीति का स्वागत नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल रहे जेब बुश ने कहा है कि यदि अरबपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं तो वे नवम्बर में होने वाले चुनाव में उनके लिए मतदान नहीं करेंगे। फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी में जेब बुश ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास राष्ट्रपति बनने लायक स्वभाव या चरित्र नहीं है। बुश ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो डेमोक्रेट उम्मीदवार बनी हिलेरी क्लिंटन का समर्थन नहीं करेंगे। हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में आगे हैं। गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद पॉल रियान ने कहा था कि वो अभी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सीरिया के अलेप्पो शहर में जारी नाजुक संघर्ष विराम को 3 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। संघर्ष विराम शुरू होने से पहले पिछले 2 सप्ताह से अलेप्पो में जारी लड़ाई में कम से कम 300 नागरिक मारे गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अलेप्पो के अंदरूनी इलाकों में बीते दिनों के मुकाबले शांति है, लेकिन शहर के दक्षिणी इलाकों में सीरियाई सेना और इस्लामी विद्रोहियों, जिनमें अल नुसर फ्रंट भी शामिल है, के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। कनाडा में पुलिस आग से घिरे फोर्ट मैकमरे शहर से हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद में जुटी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम नेपाल से कर रहे हैं। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति ने अपना भारत दौरा स्थगित कर दिया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर राजकीय अतिथि के रूप में 9 मई को आना था। उनका 14 मई को उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में शाही स्नान में हिस्सा लेने का कार्यक्रम था। राष्ट्रपति के दौरे के स्थगित होने के बाद नेपाल सरकार ने भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को वापस बुलाने का फैसला लिया। खबरों के मुताबिक उपाध्याय ने भंडारी का दौरा रद्द किए जाने से वो नाखुश थे। दीप कुमार उपाध्याय को बीते साल नेपाली कांग्रेस के कोटे से भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया था। देर रात मैंने दीप कुमार उपाध्याय से संपर्क स्थापित किया और पूछा कि आपको वापस बुलाने को लेकर सरकार ने कहा क्या है।
टेक्स्ट हमको नहीं मिला, इसका ऑफिशियल टेक्स्ट, अब इसको हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं अब सिल टैक्स टैक्सने के बाद भी फिर इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है।
दीप कुमार जी, आखिरकार क्या वजह है, नेपाल सरकार ने कुछ बताया?
करीब एक साल हम रहे, देखिए जैसे ये हमारा अर्थक्वेक का आपदा आया था इसके चंद दिन पहले हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे। इसके बाद में थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा ना समझदारी के नाते से 4-5 महीना तकलीफ उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी संबंध का सुधार नहीं है इस नाते इसको। खैर यही कहेंगे कि जो भी होगा इसको सुधारने के पक्ष में ही काम करना होगा।
आपको वापस बुलाए जाने का रीजन अभी आपको नहीं मालूम है, पॉलिटिकल रीजन है या कुछ नहीं कह सकते अभी?
नहीं, वो जैसे टेक्स्ट देखने के बाद ही हम बता पाएंगे, नहीं तो देखिए अभी राजनीति में इससे होता है, अब थोड़ा सा सरकार को कोई भी किस्म का हमसे अगर कम्फर्ट नहीं हुआ होगा तो उनका अपना निर्णय सरकार कर ही सकता है, प्रेरोगेटिव है, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम जहाँ भी रहेंगे देशी भी रहेंगे दोनों देशों के बीच में संबंध में सुधार लाना होगा, क्योंकि इट इज गाइडेड बाई द हिस्ट्री, गाइडेड बाई द ज्योग्राफी एंड कल्चरल रिलेशन एवरीथिंग। इस नाते में इसको अब सरकार का निर्णय आने के बाद में और बात हम आपसे करना चाहेंगे।
भारत में नेपाल के राजदूत रहे दीप कुमार उपाध्याय से मैंने बात की थी देर रात में। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की नेपाल की राजधानी काठमांडू में वरिष्ठ पत्रकार सी के लाल से और पूछा कि ये जो बड़े फैसले हुए इन पर आप क्या कहेंगे, नेपाल की राजनीति कहाँ है?
नेपाल भारत के संबंध में कुछ खटास आ गया है। प्रधानमंत्री को लगा कि भारत की भूमिका थी उनकी सरकार को अस्थिर बनाने में, तो उन्होंने दो काम एक साथ किया। पहला तो राष्ट्रपति का भारत दौरा कैंसिल करवा दिया और दूसरा भारत में जो नेपाल के राजदूत है उनको फिर बुलाया है।
ये बताया जा रहा है कि कुछ विवाद था दीप कुमार उपाध्याय का वहाँ के प्रधानमंत्री ओली से।
विवाद ये था कि जो नेपाल भारत सहयोग के कुछ आयोजन है पश्चिम नेपाल में, वहाँ भारतीय राजदूत के साथ नेपाल के जो भारत में राजदूत है दीप कुमार उपाध्याय वो दोनों गए साथ साथ, तो वो तो बस बहाना है। मुख्य बात यह है कि दीप कुमार उपाध्याय पिछले सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनका भूतकाल नेपाली कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और अभी के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री स्टालिनवादी प्रधानमंत्री कांग्रेस से किसी को भी देखना नहीं चाहते हैं, तो बदलने का वो एक बड़ा कारण बन गया।
लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ के आई, आपको क्या लगता है कि क्या भारत और नेपाल के रिश्ते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वाकई क्या बहुत गड़बड़ हो चुके हैं?
हाँ जरूर, अभी कुछ जब से हरप्रसाद शर्मा ओली के नेतृत्व की सरकार का गठन हुआ है, सरकार का रवैया ऐसा है कि कहते हैं काशी के लिए निकले हैं मगर पांव बढ़ते हैं लासा की ओर, और जब कहते हैं कि नहीं हम वाशिंगटन जा रहे हैं तो टोक्यो पहुंच जाते हैं। ये कहते कुछ है करते कुछ और है, इससे भारत में भी कुछ शंका उत्पन्न हुई और नेपाल को ये लग रहा है कि नहीं भाई हम ऐसे ही निकाल लेंगे चला लेंगे अपना भारत के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं होने से क्या हुआ, तो इस तरह की आपसी आशंका कब आ जाता है जब जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसमें अगर तारतम्य ना हो तो संबंध तो अच्छा रहना मुश्किल हो जाता है।
भारत नेपाल संबंधों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सी के लाल। तो नेपाल की महिला राष्ट्रपति ने भारत दौरा स्थगित किया और नेपाल सरकार ने भारत में अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। दूसरी बड़ी खबर लंदन से आ रही है, जहां से अब से कुछ देर पहले सादिक खान पहले मुसलमान मेयर बने हैं। सादिक खान ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता हैं। सादिक खान ने अपने प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को हराया। वे लंदन के मेयर बनने वाले पहले मुसलमान तो हैं ही, साथ ही यूरोपीय संघ की किसी भी राजधानी के पहले मुसलमान मेयर बन चुके हैं। दिलनवाज पाशा, बताइए कि ये कौन है सादिक खान?
जी, सादिक खान पेशे से मानवाधिकार वकील हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी पहचान इस चुनाव अभियान के बाद बताई गई वो ये है, एक बस ड्राइवर का बेटा, और यही कह करके उन्होंने वोट मांगे थे। उनके पिता लंदन में बस चलाते थे और माँ सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी, लेकिन पेशे से मानवाधिकार वकील सादिक खान का जीवन हमेशा से मुश्किलों पर जीत की मिसाल रहा है। लंदन का मेयर बनके भी उन्होंने यही मिसाल पेश की है।
पाकिस्तानी मूल के हैं और लंदन में रहते हैं। जी
जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी मूल के हैं, दक्षिणी लंदन में इनका परिवार रहता था और ये अपने पिता की 8 संतानों में से एक हैं। सबसे खास बात यह है, इन्होंने मामूली शिक्षा हासिल की। इनके पास विरासत में न दौलत थी न राजनीतिक विरासत इनके पास थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अकेले अपने दम पर एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। और सबसे अहम बात यह है कि लंदन के ये पहले मुसलमान मेयर बने हैं और इन्होंने ये साबित किया है कि अगर जज्बा हो और संकल्प हो। बीबीसी ने जो इनका प्रोफाइल किया है उसमें एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है, वो है दृढ़ संकल्प व्यक्ति। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2005 में की थी। दक्षिणी लंदन से ही टूटिंग सीट से ये लेबर पार्टी के उम्मीदवार बने, जीते भी और एक शानदार राजनीतिक करियर का आगाज किया।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। तो लंदन में पहली बार कोई मुसलमान मेयर बना और वो है सादिक खान।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं। उत्तराखंड में अब सबकी निगाहें 10 मई को विधानसभा के भीतर होने वाले शक्ति परीक्षण पर टिकी हैं, जिसमें ये तय होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के पास बहुमत है या नहीं। कांग्रेसी खेमे में एक बार फिर से उल्लास है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी खुद को आश्वस्त दिखाते हुए दावा कर रही है कि 10 मई को विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। सदन का गणित हरीश रावत के पक्ष में नजर आता है क्योंकि बागी विधायकों को वोट देने की मनाही हो गई है। ऐसे में रावत सरकार का भविष्य जन प्रगतिशील मोर्चे यानी कि पीडीएफ के विधायकों के समर्थन पर टिका है, जिसमें बीएसपी के 2 विधायक भी शामिल हैं। लेकिन शक्ति परीक्षण से एक दिन पहले यानी कि 9 मई को सीबीआई के सामने उनकी पेशी भी होनी है, जिसे लेकर रावत खासे परेशान हैं। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
अगले 72 घंटों में यह साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध टूटेगा या एक नए नाटकीय घटनाक्रम का आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कुछ समय पहले नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले की ही तस्दीक की है। बस अंतर इतना है कि इस बार कांग्रेस के 9 बागी विधायक शक्ति परीक्षण में वोट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये एक जबरदस्त झटका है। उनके दम पर हरीश रावत को चुनौती देती आ रही बीजेपी के लिए काटो तो खून नहीं की स्थिति बन गई है, फिर भी उसके तेवर कड़े हैं। बीजेपी के महामंत्री और पार्टी के इस अभियान के सूत्रधार माने जा रहे कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में हैं और संभावित रणनीति पर प्रदेश के पार्टी नेताओं को समझा रहे हैं।
हम तो फ्लोर टेस्ट के लिए हमेशा तैयार हैं और हमें मालूम है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना मुख्यमंत्रीत्व काल चलाया, ये फ्लोर टेस्ट कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, ये फ्लोर टेस्ट भ्रष्टाचार करने वाले मुख्यमंत्री के चयन का है। उनके समर्थन में लोग खड़े होंगे या विरोध में।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कभी अदालती फैसलों, कभी हरीश रावत पर हुए स्टिंग से परेशान और पस्त हो चली कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए और कहा कि विधायकों को खींचने के लिए जैसा उसके नेता कर रहे हैं वैसा पहले कभी न देखा न सुना।
आश्चर्य है कि भाजपा के एक महामंत्री पिछले 3 दिन में 3 बार चार्टर लेकर के यहाँ आ चुके हैं। रात को आते हैं, रात ही को कुछ कोशिश करके फिर निकल जाते हैं, ऐसा कभी देखा नहीं, इट इज अनहर्ड।
हरीश रावत की इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने की है, जिनकी संख्या 27 है। 6 विधायक पीडीएफ के हैं और 1 बीजेपी का निलंबित विधायक है। कुल 34 विधायकों के साथ का दावा हरीश रावत कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन सभी विधायकों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रावत के साथ एकजुटता का शपथ पत्र दिया हुआ है। फिर भी बीएसपी के 2 विधायकों को लेकर इधर अटकलें हैं कि पार्टी प्रमुख मायावती जो कहेंगी वैसा ही दोनों करेंगे। लेकिन रावत को उम्मीद है कि बीएसपी जैसा दल बीजेपी का साथ तो कतई नहीं देगा। रावत ने बीएसपी को अंबेडकर की जयंती वर्ष की याद भी दिला दी।
उत्तराखंड में सवाल धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का है और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान के उनके जन्मोत्सव के 125वें वर्ष में रक्षा का सवाल है।
उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस के 9 बागियों की रणनीति पर पानी फेर दिया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच उनके संवैधानिक पाप की बात पहले ही कह चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट की एकल बेंच में दायर उनकी याचिका पिछले कई दिनों से सुनवाई के दौर से गुजर रही है। आज उस पर फिर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में इस याचिका और इस पर होने वाली सुनवाई की कितनी सार्थकता या प्रासंगिकता रह जाएगी कहा नहीं जा सकता। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
और अब आपको बताते हैं कि आज क्या है बीबीसी इंडिया पोल का विषय।
बीबीसी इंडिया पोल।
कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की राजनीति क्या है? दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी दी, तो क्या भारत में लोकतंत्र वाकई खतरे में है या विपक्ष में रहकर कांग्रेस बेचैन हो रही है? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी बातचीत। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 7 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में पिछले साल फरवरी में लगाए गए गोवंश हत्या प्रतिबंध के कुछ हिस्सों को खारिज कर दिया है। हालांकि गोवंश हत्या पर रोक जारी रखी गई है, लेकिन अन्य राज्यों से बीफ के आयात पर से लगी रोक हटा दी गई है। अदालत का ये फैसला क्या है? पूरे ब्यौरे के साथ मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण कानून लागू कर राज्य में गोवंश हत्या, गोमांस की बिक्री तथा खाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद समाज के सभी तबकों से काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आई। एक और इस कानून का समर्थन करते हुए कुछ संगठन थे जो कई साल से इसकी मांग कर रहे थे, तो दूसरी ओर वह सब लोग थे जो समझते थे कि यह कानून समाज के मूलभूत अधिकारों का हनन है। इस कानून के लागू होने के बाद महाराष्ट्र में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनमें कुछ निरपराध लोगों को भैंस का मांस रखने और बेचने के लिए कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ी। इस कानून के लागू करने को लेकर कई आपत्तियां दर्ज की गई, जिसमें सबसे अहम थी कि कसाई का काम करने वाले कुरैशी समाज के लोगों की रोजी रोटी छीन जाना। जहां कुछ वकीलों तथा नागरिकों ने कानून की धारा 5D का विरोध किया, जिसमें गोमांस रखने और खाने पर 1 साल की कैद तथा 2000 रुपये का जुर्माना था, और मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। वहीं बॉम्बे सबर्बन बीफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली कुरैशी ने महाराष्ट्र में बैल के काटने पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी। सारी याचिकाओं को सुनने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने बीफ खाने और रखने की पाबंदी तो उठा दी, लेकिन राज्य में जानवर काटने की अनुमति नहीं दी। साथ ही अन्य राज्यों से बीफ की आपूर्ति करने की भी सहूलियत दे दी। मोहम्मद अली कुरैशी ने इस बारे में बताया,
हमारी जो डिमांड थी, हम जिसलिए कोर्ट में मूव किया था, हमने पूरा बैंड हटाने के हमारी मांग थी, और हम ये चाहते थे कि ये जो इसके ट्रेड में बरसों से जनरेशन से जो लोग कर रहे हैं ये हटे, तो ताकि वो लोग जो फुटपाथ से आ गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बैंड लगाने के साथ साथ उनके लिए कोई सुविधा कोई प्लान नहीं रखा था। अब जो कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है तो स्लॉटरिंग के ऊपर बैंड ऑलरेडी नहीं हटाया है, था वो बैंड, वो है सिर्फ जो दूसरे स्टेट से लाके आप बेच सकते हैं, आप किसी के पोजिशन में रहेगा तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, किसी की जानकारी में नहीं है कि बीफ है या वाटर बफेलो है क्या है, तो थोड़ी राहत मिली है। जिस राहत से ना तो फार्मर्स का कोई फायदा हो रहा है ना ट्रेडर्स का कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि बैंड तो अभी भी लगा हुआ है। ये बैंड हटता, स्लॉटरिंग की परमिशन कोर्ट से मिलती तो जरा राहत मिलती थी, फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है।
ये थे मोहम्मद अली कुरैशी। उच्च न्यायालय के इस आदेश से अब महाराष्ट्र में बीफ के शौकीन अपने पसंद के व्यंजनों का खुलकर आनंद उठा सकेंगे, लेकिन कुरैशी समाज को काम शुरू करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
बीफ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत। जानकारी दे रहे थे अश्विन अघोर। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर फिर से आरोप लगाए हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे इस विवाद में अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बीए और एमए की डिग्री को सार्वजनिक किए जाने की मांग पर पिछले दिनों गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री के एमए के अंक सार्वजनिक किए थे, लेकिन डीयू इस मामले पर अभी तक चुप है। सारा मामला बीए की डिग्री पर आकर टिक गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया ही नहीं। सुनिए अंजुम शर्मा की रिपोर्ट।
पिछले कई दिनों से देश में प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साबित किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री हासिल करने के बारे में झूठी जानकारी दी है। आपके अनुसार डीयू से नरेंद्र कुमार महावीर प्रसाद मोदी नाम के व्यक्ति ने ग्रेजुएट किया है, न कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा,
मोदी ने 1975 में एडमिशन लेकर 1978 में बीए या ग्रेजुएशन कंप्लीट तो करी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र महावीर प्रसाद मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी सितंबर 1950 में नहीं जन्मे थे, वो नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर 1958 में जन्मे थे। वो नरेंद्र मोदी गुजरात के निवासी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी 21 आर्यनगर अलवर राजस्थान के निवासी हैं। यानी कि वो नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी कोई और नरेंद्र मोदी हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के चुनाव से पहले हलफनामे में जानकारी दी थी कि उन्होंने वर्ष 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए पास किया है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग पर केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम की डिग्री की जानकारी देने का निर्देश दिया था, जिसके जवाब में गुजरात विश्वविद्यालय ने बताया था कि मोदी ने अपनी एमए की परीक्षा 62.3% अंकों के साथ पास की थी, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा था कि उनकी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए नहीं किया और कुछ अखबारों में छपी पीएम की डिग्री फर्जी है। केजरीवाल ने इस संबंध में डीयू के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को पत्र लिखकर सच्चाई सामने लाने का भी अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब मोदी की बीए की डिग्री ही फर्जी है तो वो एमए कैसे कर सकते हैं। उधर कांग्रेस ने भी कहा है कि पीएम को अपनी चुप्पी तोड़कर अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए।
मोदी की डिग्री पर आम आदमी पार्टी का निशाना। और अब कार्यक्रम में अखबारों का जिक्र करते हैं। दिलनवाज पाशा, अखबार आप पढ़ चुके हैं, बताइए कि क्या कह रहे हैं दिल्ली में छपने वाले अखबार।
जी, दिल्ली से प्रकाशित सभी अखबारों में एक जो आज सबसे अलग नजर आ रहे हैं वो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल कांग्रेस नारे लगाते हुए बैरिकेड, पुलिस के बैरिकेड के पास ही खड़े हैं। तो आमतौर पर इनका ये रूप शायद पहले ही कभी अखबारों में आया।
मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का मनमोहन सिंह को हमने पहले भी कभी देखा होगा जब वो जनता के बीच में बैरिकेटिंग के पास नजर आ रहे हैं।
जी जी बिल्कुल। द टाइम्स ऑफ इंडिया इसी खबर पर लिखता है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के हवाले से कि अगस्ता वेस्ट के मामले को बोफोर्स मामला नहीं बनने दिया जाएगा और जिन लोगों ने रिश्वत ली है उनको सजा दिलाई जाएगी, ये कहा है मनोहर पर्रिकर ने। और द हिंदू ने पर्रिकर के ही एक दूसरे बयान को सुर्खी बनाया है जिसके मुताबिक एसपी त्यागी जो भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। मनोहर पर्रिकर का कहना है कि ये बड़ी मछलियों में से बहुत छोटी मछली है, ये उन्होंने कहा है। और एक और खबर जो आज के अखबारों के सभी पहले पन्नों पर है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार का फ्लोर टेस्ट 10 मई को होगा। सभी अखबारों के पहले पन्ने पर खबर है ये। और एक और फैसला आया था महाराष्ट्र में बीफ बैन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें
हमने कार्यक्रम में जिक्र किया, रिपोर्ट सुनवाई,
वो खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जिक्र करना चाहेंगे दैनिक भास्कर की एक पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर का, दो शंकराचार्य अखाड़ा प्रमुख बोले स्नान राजनीति से बढ़ेगा भेदभाव। मध्य प्रदेश में उज्जैन में जारी सिंहस्थ महाकुंभ में दलित स्नान को लेकर के विवाद हो रहा है और उसी से जुड़ी ये खबर है। वहीं एक और खबर है जिसमें सुब्रत राय सहारा को पैरोल मिल गई है और
एक महीने की पैरोल मिली
जी है। और चीफ जस्टिस ने कहा है ये होता है माँ का प्यार कि वो मरकर भी मदद कर जाती है। चीफ जस्टिस
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे कल जो फिल्में रिलीज हुई, वन नाइट स्टैंड, ट्रैफिक और 1920 लंदन। इनमें से ट्रैफिक फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं फिल्म समीक्षक अर्णव बनर्जी हमारे सहयोगी राखी के साथ।
एक इमरजेंसी केस है, 12 साल की बच्ची को ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट की जरूरत है।
अभी वो लड़का मरा नहीं है, बट हिज कंडीशन इज वेरी बैड। ट्रांसप्लांट के लिए उसका हार्ट मरने से पहले निकालना बहुत जरूरी है।
इस हफ्ते रिलीज हुई है लेट डायरेक्टर राजेश पिल्लई की फिल्म ट्रैफिक। देखकर आ चुके हैं हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी। अर्णव, क्या बॉक्स ऑफिस पर ट्रैफिक जमा करने में कामयाब हुई है ये फिल्म?
ट्रैफिक एक बहुत अनयूजुअल कहानी है, इसमें मनोज बाजपेयी एक कांस्टेबल बने हैं, वो बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन एक घटना होती है जिसमें कि एक डॉक्टर इन्वॉल्व है और एक जर्नलिस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से सबकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें फिक्शनल हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे जोड़ दिए गए हैं। फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जैसे मनोज बाजपेयी तो हैं, अभी उनकी अलीगढ़ देखी हमने, दिव्या दत्ता हैं, किट्टू गिडवानी हैं, सचिन खेडेकर हैं, और साथ में ऐसे भी कलाकार हैं जो कम दिखाई देते हैं, जैसे प्रसेनजीत जो बंगाल के बहुत बड़े हीरो हैं, या परमव्रत चैटर्जी हैं जिनको हमने कहानी में देखा है। तो सबके छोटे छोटे रोल्स हैं, लेकिन एक बहुत सशक्त एक मजबूत कहानी है।
क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो जो इम्पैक्ट बनाती है एक रियल इंसिडेंट स्टोरी, वो ये ट्रैफिक देती है, इम्पैक्ट देती है उस तरह का।
देखिए, हम सब को मालूम है कि फिल्मों में जो है वो यथार्थ दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि होती सब कहानियां हैं, जिंदगी में भी बहुत सी कहानियां हैं। कहानी जिंदगी की ऐसी नहीं होती है 3 घंटे में जो पूरी हो जाए, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, ऐसा ताना बाना बुनना पड़ता है पात्रों को लेके, कि हम उसको 3 घंटे में एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे डाले गए हैं जो कि कुछ अविश्वसनीय हैं, यानी किसी भी तरह से हार्ट को पहुंचाना एक जीप में और उसी दौरान एक और एक्सीडेंट होना, यानी वो रोमांच पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि हाँ, ये मानवता के लिए ऐसा करा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ऐसा जिसने भी किया है तो उसको सलाम है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म को एक थ्रिलर की तरह पेश किया गया है, और एक्टिंग सबकी अच्छी, छोटे छोटे पात्र है लेकिन अच्छी है।
ये थी फिल्म ट्रैफिक की समीक्षा, और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। IPL 9 में कल केवल एक मुकाबला खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात लायंस को 5 विकेट से मात दी। हैदराबाद के सामने जीत के लिए 127 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के नाबाद 47 रनों की मदद से 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले गुजरात ने आरोन फिंच के नाबाद 51 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 126 रन बनाए। आज IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राइजिंग पुणे सुपर जायंट से और किंग्स 11 पंजाब का सामना दिल्ली डेयर डेविल्स से होगा। उधर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी के रूप में खेल रही भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस महिला युगल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने सेमीफाइनल में गैर वरीयता हासिल जोड़ी अमरीका की वानिया किंग और रूस की एला कुद्रियावत सेवा की जोड़ी को बेहद आसानी से 6-2, 6-2 से हराया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे ने 8वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य के टॉमस बर्डिच को 6-3, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। मैड्रिड ओपन में ही महिला एकल वर्ग में स्लोवाकिया की डोमिनिका चिबुलकोवा ने अमेरिका की लुइसा चिरिको को 6-1, 6-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं जर्मनी में समाप्त हुए ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 4th स्थान हासिल किया। इटली 7 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पहले, रूस 5 स्वर्ण 6 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ दूसरे, और जर्मनी 5 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
और अब उन खबरों की चर्चा जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में आज रैली करने वाले हैं। देखना यह है कि कल नरेंद्र मोदी के आरोपों का आज वो अगस्ता मामले पर क्या जवाब देते हैं। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में पुलिस जंगल की आग से घिरे फोर्ट मैकफरी शहर में फंसे हजारों लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अलप्पो में जारी 48 घंटों के संघर्ष विराम को 3 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब कार्यक्रम में इससे पहले हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अपना भारत दौरा स्थगित कर दिया है। नेपाल सरकार ने शुक्रवार को भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को वापस बुलाने का फैसला भी किया है। लेबर पार्टी के सादिक खान लंदन के मेयर चुने गए हैं। वे ब्रिटानी राजधानी के पहले मुसलमान मेयर होंगे। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल रहे जेब बुश का कहना है कि वे डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सीरिया के अलेप्पो शहर में जारी नाजुक संघर्ष विराम को 3 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और कनाडा में पुलिस आग से घिरे फोर्ट मैकमरे शहर में हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद कर रही है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। 1 घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।